الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ تعالی بڑے مہربان نہایت رحم والے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ کی جو رحمت ہے جو مہربانی ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں لطف و مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو پیار محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 100 حصوں میں سے وہ ایک رحمت ایک حصہ رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ جو دنیا میں اتارا گیا ہے یہ اسی کا ثمرا ہے اور اسی کی برکت ہے اسی کا فیضان ہے تو اللہ تعالی شانہ کتنے رحیم ہوں گے کتنے مہربان ہوں گے اسی مہربانی اور اسی رحمت کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں پر نعمتیں نچھاور کرتے رہتے ہیں مادی نعمتیں بھی روحانی نعمتیں بھی ظاہری نعمتیں بھی باطنی نعمتیں بھی وہ نعمتیں بھی جن کا نفع دنیا میں ظاہر ہوگا اور وہ نعمتیں بھی جن کا نفع آخرت میں ظاہر ہوگا عبادتیں کیسی کیسی بنائی اللہ نے ہمارے لیے اور ان عبادتوں کے نتیجے میں ہمیں کیا کیا دیتے ہیں اللہ تعالی شانہ اس کا یہ فائدہ ہے 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 سبحان اللہ پڑھو تو یہ ملے گا الحمدللہ پڑھو تو یہ ملے گا اللہ اکبر پڑھو تو یہ ملے گا لا الہ الا اللہ پڑھو تو یہ ملے گا ثواب تو ملتا ہی ہے لیکن ثواب کے علاوہ دوسرے دنیاوی اور اخروی فوائد ظاہری اور باطنی فوائد रूहानी फवाइद, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इनके बारे में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अहब्बुल कलामी इलल्लाह अरबाउन, चार जुमले अल्लाह ताला शानहु को बहुत ज्यादा महबूब हैं। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और ये जो चार कलेमे हैं उनका खुलासा फिर दो जुमलों में आ गया, सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल अज़ीम। तो सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल अज़ीम बहुत वजनी है, मीजान में बहुत वजनी। तो सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल अज़ीम बहुत वजनी है, तो जिन चार कलीमों का ये खुलासा है वो कितना वजनी होगा। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब ये जो कलीमात हैं इन्हें जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीजान, जब कोई सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो मीजान और स्केल का जो दाई तरफ वाला पलड़ा है वो पूरा भर जाता है, इतना सवाब मिलता है सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो। और ये पलड़ा कितना बड़ा है, तो हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि एक पलड़ा इतना बड़ा है कि लवुदियत फी इहदाहुमा अस्समावात वल अर्द वमन फीहिन, आसमान और जमीन और जो कुछ आसमान और जमीनों में है उन सबको अगर उस पलड़े में रख दिया जाए, ये सिर्फ जमीन नहीं आसमान जमीन और जो कुछ भी उनमें है यानी पूरी कायनात, अगर इन सब चीजों को रख दिया जाए एक पलड़े में तो फिर भी उस पलड़े में जगह बाकी रहेगी। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ये पलड़ा भर जाता है। तो सवाब तो अपनी जगह पर, इसका सवाब इतना है अल्हम्दुलिल्लाह का, फिर सुबहानअल्लाह का सवाब कितना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब कितना होगा, अल्लाह अकबर का सवाब कितना होगा, सवाब अपनी जगह पर, ये भी फायदा है सवाब। लेकिन ये जो चार कलिमात हैं इन चार कलिमात में हक ताला शानहू कि जो उलूहियत के मकामात हैं उनका तज़किरा है। अल्लाह ताला शानहू की जो उलूहियत है, अल्लाह ताला शानहू की जो माबूदियत है, अल्लाह का माबूद होना है, उनके चार मकामात हैं, मकाम तंजीह, मकाम तनवीह, मकाम तमजीद और मकाम तौहीद। वक्त की किल्लत की वजह से इसकी तफसील में इस वक्त नहीं जाऊंगा और मकसूद भी नहीं है वो। तो जो शख्स इनका विर्द रखता है उसके कल्ब में ये चार मकामात जो हैं वो रासिख होते हैं। हक तआला शानहू की तंजीह जो है, तंजीह किसको कहते हैं कि ये एतिकाद कि जिसको मैं माबूद समझ रहा हूं और जिसको मैं माबूद एतिकाद करता हूं और जिसको मैं माबूद मानता हूं वो हर ऐब से पाक है, ये तो बुनियादी बात हुई। फिर ये तंजीह का जो अकीदा है उसमें जब तरक्की होती है तरक्की होती है। अव्वल वहले में कारी साहिब को देखा और बादल वाला दिन था और ऐसे घर में देखा जिसमें रोशनदान और खिड़कियां भी कम थी, तो अव्वल वहले में देख करके नजर तो आ गया कि कारी साहिब हैं। करीब गए तो ये नजर आया कि चेहरा चेहरे पर बशाशत है या कोई नकाहत है, ये नजर आएगा कि कपड़े कैसे पहने हुए हैं, और अगर बत्ती जला दो तो और ज्यादा। तो ये तो हर मुसलमान का एक अकीदा है कि माबूद बरहक जो है वो हर ऐब से पाक, इसलिए कि माबूद बरहक में किसी ऐब का अदना शाइबा भी हो तो माबूद कैसे होगा, ऐब वाली चीज माबूद कैसे होगी, लायक इबादत कैसे होगी, ऐब कोई नहीं उसमें। लेकिन इससे बात नहीं बनती, इससे बात नहीं बनती। एक चीज बेऐब है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत बड़ी चीज है, बेऐब है लेकिन कमालत नहीं है। भाई एक शख्स बदसूरत नहीं है मगर खूबसूरत भी नहीं, एक शख्स बदसूरत है तो उस पर तो चौकड़ी लग जाएगी, और दूसरा शख्स बदसूरत नहीं, अगली नहीं है मगर हैंडसम भी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो बदसूरत नहीं कि नफरत पैदा हो मगर हैंडसम भी नहीं कि दिल को लगे कशिश हो, तो ये मकाम तंजीह से काम नहीं बनता। इसलिए कि मकाम तंजीह से तो इतना पता चलता है कि बेऐब है तो क्या हो गया भाई, बेऐब है चलो बेऐब है, नहीं वो बेऐब है और जितने कमालात है उन सब कमालात का मुजस्समा भी है। एक शख्स अपने वालिद के बारे में कहे कि मेरे वालिद कंजूस नहीं है, और दूसरा ये कहे कि मेरे वालिद कंजूस नहीं है मगर बहुत बड़े सखी हैं, तो दोनों बापों में फर्क है। कंजूस नहीं है का मतलब ये कि जरूरत की जगह पे खर्च भी करता है, और सखी है का मतलब ये कि दिल खोलकर हर जगह खर्च करता है। तो पहला शख्स जो है कि मेरा वालिद कंजूस नहीं है, मेरे वालिद कंजूस नहीं है, इसका मतलब है कि ऐब से पाक है लेकिन कमाल नहीं है उसमें, और दूसरा ये कि कंजूस नहीं है और सखी भी है, इसका मतलब ये कि ऐब भी नहीं है और कमाल से भी मुत्तसिब है। मकाम तंजीह सुबहान अल्लाह, और मकाम तनवीह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ है उसके लिए, इसलिए कि सारे कमालात उसमें हैं। चलो भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि मेरे वालिद कंजूस नहीं और सखी है, तो दूसरा कहेगा मेरे वालिद भी कंजूस नहीं और सखी है, तो तीसरा कहेगा कि मेरे वालिद भी कंजूस नहीं और सखी है, तो चौथा कहेगा कि मेरे वालिद कंजूस नहीं मगर तुम तीनों के बाप से ज्यादा सखी है, तुम्हारे सबके अब्बा सखी है, मेरे अब्बा असखा है। तो तमाम अयूब से पाक और तमाम कमालात के मुजस्समे, लेकिन सबसे बड़े हैं या नहीं, तो क्योंकि हां सबसे बड़े भी हैं, उन जैसा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हर ऐब से पाक, तमाम कमालात से मुत्तसिफ, और सबसे बड़े मकाम तमजीद। और जब इन तीन मकामात से कोई गुजर जाता है तो फिर आगे कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं आती, जब तमाम ऐब से पाक और तमाम कमालात से मुत्तसिफ और सबसे बड़े भी, तो दिल खुद पुकार कर कहेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं हो सकता। यह है मकाम तौहीद। मकाम तौहीद पर लाने वाले पहले तीन मकामात हैं। ये कलिमात ऐसे हैं कि जो जितना पढ़ता चला जाएगा उसके दिल में मकाम तंजीह और मकाम तनवीह और मकाम तमजीद और मकाम तौहीद का जो अकीदा है वो बढ़ता चला जाएगा, और यही बुनियाद है। इसीलिए अल्लाह ताला शानुहु के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल कलाम इलल्लाह अरबाउन, चार कलेमे अल्लाह को बहुत महबूब है, इसलिए कि उसमें अल्लाह की उलूहियत के मकामात बयान हुए हैं। और फिर इनका खुलासा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह में मकाम तंजीह है, वो बिहम्दिही में मकाम तनवी है, اور سبحان اللہ العظیم, اللہ العظیم عظمت والے اللہ, اس میں مقام تمجید ہے. اور جب تین مقامات طے ہو گئے تو چوتھے کو تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو ہر سلیم الفطر انسان پکار اٹھے گا اور کہے گا کہ اگر یہ باتیں ہیں تو پھر میرا بھی یہی معبود ہے. اور اسی وجہ سے کہا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب, اس لیے کہ ان میں مقام الوہیت ہے. خفیفتان علی اللسان, دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اس لیے زبان پر ہلکے, چھوٹے بھی ہیں چھوٹے, دو جملے ہیں صرف, پھر چھوٹے ہیں دو پیراگراف نہیں دو جملے ہیں, اور دو جملے بھی پھر چھوٹے چھوٹے, اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی جن حروف کا انتخاب ہوا ہے سین با ہا الف نون, تو تختی میں جتنے حروف ہیں ان میں سے جتنے آسان حروف ہیں انہی کو استعمال کیا گیا ہے. عبارت اس طرح لکھی گئی ہے, بنائی گئی ہے, جملوں کو اور حروف اور الفاظ کو اس طرح مرکب کیا گیا ہے کہ عربی زبان جاننے والا فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ تو بہت ہلکے پھلکے الفاظ ہیں, پروننسیشن بہت ایزی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, بہت ایزی, تو مخارج کے اعتبار سے بھی بہت ایزی. خفیفتان علی اللسان, اب جملے چھوٹے, سینٹنسز چھوٹے, اور مخارج پروننسیشن کے اعتبار سے بھی بہت آسان ایزی بولنے کے, یاد بھی بہت جلدی ہو جائیں گے, بولنا بھی بہت آسان ہوگا, زبان پر بہت ہلکے, لیکن کہا کہ ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بہت بھاری ہوں گے. کیوں بہت بھاری ہوں گے؟ اس لیے کہ ان میں مقامات الوہیت کا ذکر ہے. مقامات الوہیت کا ذکر ہے, مقامات الوہیت. تو کبھی کبھی چیز چھوٹی ہوتی ہے مگر بہت بھاری ہوتی ہے. ابھی بخاری شریف والوں کو ایک بات سمجھا رہا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ایک طرف $100 کی نوٹ ہے اور دوسری طرف $100 کی نوٹ, اور دوسری طرف ₹1000 کی نوٹ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ₹1000 کی نوٹ سائز میں بڑی ہو, تو سائز میں بڑی, اور $100 کی نوٹ سائز میں بھی چھوٹی, ورق بھی کم استعمال ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں ₹1000 کی نوٹ ہیوی ہو اور $100 کی نوٹ ہلکی ہو, اور کوانٹٹی میں بھی وہاں 1000 اور یہاں 100, لیکن حقیقی معنی میں اگر وزن کو دیکھنے جائے تو یہ ₹1000 کی نوٹ 100 کے قریب بھی نہیں آ سکتی, $100 کے قریب, اس لیے کہ فی الحقیقت اس کا وزن بہت ہے. یہ 100 جو ہے, 100 یہ بہت وزنی, یہ 10,000 کے برابر ہے, تقریباً ₹10,000 بنیں گے $100 کے. تو دیکھو ہلکی پھلکی چیز ہے مگر بہت وزنی. تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے اذکار اور اوراد آپ پڑھیں ان پر وہ نفع آپ کو نہ ہو جو ان میں, اور وہ اتنے وزنی نہ ہو میزان میں جو یہ ہے. ثقیلتان فی المیزان, کہو بھائی سب سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, روزانہ 100 پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اگر کوئی تھوڑا توجہ کے ساتھ اس کو پڑھے تو اور بڑھیا, توجہ سے پڑھے تو اور بڑھیا, توجہ سے پڑھے تو اور بڑھیا, بہترین ناشتہ ہے. مگر ہے آپ کے پاس صرف 10 کھانے کی, اور 10 ہے کھانے کی, اس میں بھی وہ آفس میں جا رہے ہیں تو ابھی فائل مرتب نہیں ہوئی ہے, تو ناشتہ کرتے کرتے وہ فائل کو بھی ٹھیک کر رہا ہے, تو توجہ ناشتے کی طرف نہیں ہے. اور باس کا ٹیلی فون بھی آ گیا, اب 10 ہے, فائل بھی ٹھیک کر رہا ہے اور باس کے ساتھ بات بھی کر رہا ہے, تو دونوں ہاتھ مشغول, اور بی بی صاحبہ منہ میں لکمے ڈال رہی ہے, वही नाश्ता है जो बीबी खाएगी। आप जो नाश्ता खा रहे हैं वो बीबी वाला ही है, लेकिन आपके चले जाने के बाद बीबी आराम से बैठेगी दस्तरखान पे और मजे ले लेकर पूरी तवज्जो के साथ खाएगी। तो दोनों में फर्क है, नाश्ते का कुछ ना कुछ फायदा उसको भी होगा और कुछ ना कुछ लज्जत उसे भी आएगी, लेकिन जो बीबी साहिबा को मजा आएगा वो उसको नहीं और जो फायदा होगा वो उसको नहीं। इसलिए अगर कोई बहुत बिजी है उसे ये नहीं समझना चाहिए कि बगैर लज्जत के क्या फायदा, वो बस वो पढ़ता रहे सुभान अल्लाह व बिहमदिह सुभान अल्लाह अलअजीम, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। और ये कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ ये दुनिया व माफिया से बेहतर, ये कुछ ना कुछ तो दीनी एतबार से हम कर रहे हैं। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम, पूरा सुभान अल्लाह नहीं, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, पूरा सुभान अल्लाह वो भी हमद ही नहीं, सिर्फ अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम इतना कदर कीमत वाला है कि कोई शख्स कितनी ही गफलत से अपनी जुबान से अल्लाह का नाम निकाले उसके दिल पर ये असर किए बगैर नहीं रहता, असर जरूर करेगा दिल पर। भाई अहकमुल हाकिमीन का नाम, चाहे वो गफलत ही से निकल जाए और उसका फायदा ना हो, सब नामों में अफजल नाम, सब नामों में आला नाम, ऐसा कोई अलम ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह नाम ही ऐसा कि मुंह भर जाता है, मुंह भर जाता है जब भी बोले अल्लाह, ये पूर है बारीक नहीं, अल्लाह। तो अल्लाह जब आदमी बोलता है तो पूरा मुंह भर जाता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह अल्लाह करने वाले की हर चीज भर जाती है, सारी जरूरतें उसकी पूरी हो जाती है, जाहिरी बातिनी जिस्मानी रूहानी दुनियावी उखरवी, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। हाँ भाई अल्लाह 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 हमें तौफीक दे इसकी, अल्लाह हमें तौफीक दे इसकी। तो गफलत के साथ ही सही, जो गफलत से पढ़ेगा, गफलत से, जो गफलत से पढ़ेगा, जो गफलत से अल्लाह का नाम लेगा वो जिक्र की तरफ आएगा, गफलत से पढ़ेगा वो ध्यान की तरफ आएगा, गफलत से पढ़ेगा वो इस्तेहजार की तरफ आएगा, गफलत उसे इस्तेहजार की तरफ लाएगा, गफलत वाला जिक्र इस्तेहजार की तरफ लाएगा, और अगर इस्तेहजार के साथ पढ़ेगा तो इस्तेहजार में तरक्की होगी। ये शैतान की चाल है कि ध्यान के बगैर पढ़ते हैं क्या फायदा इसका, पोपट की तरह पढ़ते हैं क्या फायदा इसका। कुरान से रोकने के लिए भी शैतान ये ख्याल डालता है दिल में कि कुरान समझे बगैर पढ़ना क्या फायदा। तो एक तो ये तरीका है कि जिस तरह चाहे पढ़ लो, गनीमत है ये भी, छोड़ो मत, छोड़ो मत, ये चलते फिरते पढ़ना, यही एक दिन अल्लाह के नाम को की रट लगाने के लिए बिठा देगा किसी जगह पर, ये चलते फिरते पढ़ना ही किसी जगह बिठा देगा, बगैर तवज्जो के पढ़ना ही तवज्जो का सबब बनेगा, इसे पढ़ते रहो, छोड़ो मत, छोड़ो मत, ये तौफीक अल्लाह की तरफ से मिल रही है, जितना करने की वो करते रहो और अल्लाह से मांगते रहो कि अल्लाह क्वांटिटी को भी बढ़ा और क्वालिटी को भी बढ़ा। लेकिन अगर कभी मौका मिल जाए, जिनको तौफीक हासिल हो जाए रोजाना, तो ऐसा सोच करके पढ़ें कि इस वक्त में मेरे खालिक मेरे मालिक मेरे माबूद मेरे मस्जूद के उलूहियत के मकामात को बयान कर रहा हूं, इसलिए मेरा अल्लाह बहुत खुश हो रहा है। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शानुहु को अपनी तारीफ जितनी पसंद है इतनी किसी को पसंद नहीं अपनी तारीफ। मामिन शय्यिन अहब्ब इलल्लाहिल मदहु मिन अल्लाह औ कमा قال सल्लल्लाहु अलैहि। हर शख्स को अपनी तारीफ पसंद है। जय्यद हाफिज हैं आप माशाल्लाह, बहुत खुश हुए। आप बड़े अखलाक वाले हैं माशाल्लाह, बहुत खुश हो गए। हर शख्स को अपनी तारीफ पसंद है, हर शख्स को अपनी तारीफ पसंद। कुछ वो लोग होते हैं जो तारीफ पर खुश इसलिए होते हैं कि उनको ऐसा एहसास होता है कि मैं साहिब कमालात हूं। बड़े जय्यद हाफिज हैं ये, बहुत खुश हुए और इतने खुश हुए कि आपे से बाहर। लेकिन जब दिल का ऑपरेशन किया तो पता ये चला कि इसको अपना कमाल समझ रहे हैं कि मैं कुछ हूं इसलिए मैं जय्यद हाफिज हूं, मेरे अंदर कुछ है। ये भी हाफिज है, ये भी हाफिज है, ये भी हाफिज है, ये भी हाफिज है, ये भी हाफिज है। इनको तो इतना याद नहीं जितना मुझे याद है। मेरे ये मेरा कमाल है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी जहानत है, ये मेरा हाफिजा है, मेरी मेमोरी है। आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं कुछ हूं। और दूसरे शख्स को भी कहा कि ये जय्यद हाफिज है, वो भी बहुत खुश हुआ और वो भी आपे से बाहर हो गया दोनों। लेकिन इनका ऑपरेशन किया तो ये खुशी इसलिए महसूस कर रहे हैं कि मैं नुतफे से पैदा होने वाली एक मखलूक, मेरे अल्लाह का कितना करम है कि मुझे ऐसा बना दिया कि आज मखलूक मेरी तारीफ कर रही है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, इस बात पर खुश हूं कि मेरे अल्लाह ने मेरे साथ ये मामला किया। तो ये कमालात को अपनी तरफ मंसूब करते हैं, ये किब्र है, उज्ब है। किब्र और उज्ब, ये भी खुश हो रहे हैं, ये किब्र उज्ब में खुश, ये भी खुश हो रहे हैं, लेकिन कमालात को अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं ये शुक्र में है। ये किब्र उज्ब में है, ये शुक्र में है। तो तारीफ से खुश होते हैं लोग, बाज लोग गलत तरीके से, बाज लोग अच्छे तरीके से। शर्म से पानी पानी अंदर हो जाते हैं, मगर खुशी होती है कि मेरे अल्लाह का बड़ा करम है, मेरे अल्लाह का बड़ा करम है कि सत्तारी फरमाई है अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहु वअम्म नवालुहु अपनी तारीफ से जितने खुश होते हैं इतना कोई नहीं होता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया? हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाने के लिए, कि जब कोई अल्लाह की तारीफ करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। और अल्लाह बहुत खुश होता है, इसमें बुराई इसलिए नहीं है कि अल्लाह तो काबिल तारीफ है। हम किसी की तारीफ पर खुश हों ये बुरा है, इसलिए कि हम काबिल तारीफ नहीं, हमारे पास है ही किया कि हम खुश हों। हां, इस तरह खुश हो सकते हैं कि मेरे अल्लाह का दिया हुआ हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी, नेकी करने की तौफीक मिलती है। और नेकी करने की तौफीक मिलती है तो यह नेमत है कि नहीं? तो नेमत है तो उस पर खुशी महसूस हो किसी को, और इस एतबार से खुशी महसूस हो कि मेरे अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने मुझे रात को जल्दी सुला दिया, तहज्जुद के वक्त उसने मेरी आंखें खोल दी और मुझसे वुजू करवाया, मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा अल्लाह मुझे तौफीक दे रहा है, मेरे अल्लाह के अल्ताफ मेरे ऊपर बरस रहे हैं। ये खुशी, इसके लिए तो दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह से यह दुआ करो कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल लदीने इज़ा अहसनू इस्तबशरू, ये अल्लाह मुझे उन लोगों में से बना दे जिनको नेकी की तौफीक मिले तो वो खुशी महसूस करे दिल में कि अल्हम्दुलिल्लाह। दूर चला गया। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिक्र जो है, जिक्र ध्यान से करो कि मेरा अल्लाह मुझे ये कह रहा था, मेरा अल्लाह मुझे, मैं मेरे अल्लाह के मकामात उलूहियत को बयान कर रहा हूं। और वो खुश हो रहा होगा इसलिए कि अल्लाह को अपनी तारीफ बहुत पसंद है, अल्लाह को अपनी तारीफ बहुत पसंद है। तो मैं मेरे भाइयों ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह जल्ल जलालुहु वअम्म नवालुहु ने हम पर बहुत नेमतें निछावर की हैं, और किन किन नेमतों में क्या किया छुपा हुआ अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में क्या है, सुभान अल्लाह में क्या है, ये जो सवाब हमें बतलाए जाते हैं, सवाब बतलाए जाते हैं, डॉक्टर जब हमें दवा देता है तो डॉक्टर ये कहता है कि इस दवा को खाने से तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, इस दवा को खाने से तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, इस दवा को खाने से तुम्हारी शुगर कंट्रोल में रहेगी। ये डॉक्टर हमें सिर्फ एक ही चीज बतलाता है, इसलिए कि डॉक्टर समझता है कि बाकी इस दवा के जिस्म को क्या क्या फायदे पहुंचने वाले हैं वो ये नहीं समझ सकेगा, इसलिए हमें इतना कह देते हैं कि भाई इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा, तुम्हारे ब्लड प्रेशर को बहुत फायदा होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। और वो डॉक्टर समझता है कि मैं एक बात ऐसी बतला दूं जिसे ये समझ भी सके और जो इसकी नजर में इतना बड़ा फायदा हो कि अच्छा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है तब तो मुझे लेनी चाहिए। तो आमाल के ऊपर जहां जहां फजीलतें आई है वो ऐसी ही है कि वो फजीलतें और वो फायदे हैं जो हम समझ सके और जिनको सुनकर के हम अमल को करने के लिए तैयार हो जाएं। वरना आप क्या समझते हैं कि अल्लाह के लिए हम कोई काम करें और उसका इतना ही फायदा हो कि एक हर्फ पर दस नेकी, इतना ही फायदा हो। मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु भी हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, कुरान का इतना ही फायदा होगा कि आप अलिफ लाम मीम कहो तो अलिफ के बदले में आपको सिर्फ दस नेकी मिल गई और छुट्टी नहीं, नहीं इसके तो बड़े फवाइद हैं। जैसे अलिफ लाम मीम की तफसीर कयामत के दिन समझ में आएगी, इसी तरह अलिफ लाम मीम के कितने रूहानी फवाइद मुझे और आपको मिले थे वो कयामत के दिन ही नजर आएंगे। लेकिन जो कि अल्लाह जानते थे कि एक के बदले में दस, इंसान को मैंने बनाया ऐसा है कि ये फौरन समझ में आ जाएगी बात, इसे को एक के बदले में दस और उसके लिए तैयार हो जाएगा पढ़ने के लिए, इतना काफी है, इतना काफी है। इसी के दुनिया में तो मैंने इसे अमल करने के लिए भेजा है, जो फायदे उसको पहुंचाने हैं वो तो आखिरत में मिलेंगे, यहां तो इतना कर दूं कि बस अमल के लिए तैयार हो जाए। तो अल्लाह ताला शानहू ने ऐसी ऐसी इबादतें हमें दी, सजदे के पता नहीं क्या फायदे होंगे, सजदे के रुकू के क्या फायदे होंगे, कयाम के क्या फायदे होंगे, सूरह फातिहा के क्या फायदे होंगे, सूरह फातिहा के एक एक लफ्ज के क्या फायदे होंगे, दुआओं के क्या क्या फवाइद होंगे, मजलिसों के सोहबतों के फायदे होते हैं, सोहबतों के इल्म के फायदे हैं, मुजाहदा करने के फायदे हैं, जगहों के फायदे हैं, जगहों के मक्का मुकर्रमा का अपना फायदा, मदीना मुनव्वरा का अपना फायदा, जगहों के फायदे हैं। मस्जिदों में भी आप महसूस करते होंगे कि किसी मस्जिद में आप चले गए तो दिल लगा, दूसरी में चले गए तो ज्यादा दिल लगा, तीसरी में चले गए तो और दिल लगा। देखो मस्जिदों के भी अलग अलग फायदे, अलग अलग जगह अल्लाह ने बनाई है, बातिनी एतबार से किस मस्जिद में ज्यादा रूहानियत है वो अल्लाह ही जानते हैं, हम और आप नहीं जानते। इसी तरह किसी के पास बैठे तो अलग फायदा, किसी और के पास बैठे तो अलग फायदा, किसी और के पास बैठे तो ये किसके पास क्या रूहानियतें हैं अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। वेजिटेबल कितने बनाए अल्लाह ने हमारे लिए, कितनी किस्म के वेजिटेबल, अलग अलग वेजिटेबल के अलग अलग फायदे। फ्रूट्स कितने बनाए, अलग अलग फ्रूट के अलग अलग फायदे, अलग अलग रंग, अलग अलग शक्ल, अलग अलग मजे, अलग अलग फायदे। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह सोहबतों के, इबादतों के, जगहों के, दिनों के, दिनों के सोमवार का अलग फायदा, मंगल का अलग फायदा, बुध का अलग फायदा, जुमेरात का अलग फायदा, जुमे का अलग फायदा। शबे कदर आ जाती है तो अलग फायदा, अरफा का दिन आ जाता है तो अलग फायदा। पर एक शख्स जो है अराफा के दिन अराफात में पहुंच जाता है तो जगह का भी फायदा और दिन का भी, टाइम का भी फायदा, जमाने का भी फायदा। और फिर अराफात में जगह का भी फायदा और अराफा का दिन टाइम का भी फायदा और वहां नेकों की सोहबत मिल जाए और फिर उसमें नमाज का फायदा, जिक्र का फायदा, यानी ये बे इंतहा फवाइद। और ऐसा नहीं कि साल में एक ही दिन है, एक ही घड़ी है, तो अब वो घड़ी चली गई तो अब पूरा साल इंतजार करो, रमजान मुबारक चला गया, इंतजार करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रमजान खत्म होता है तो हज के महीने शुरू हो जाते हैं। ईद का चांद नजर आया तो नजर, ये हद फासिल है, ईद का चांद नजर आया, रमजान खत्म, हज का महीना शुरू। ये शव्वाल का महीना हज का महीना है, ये भी मुबारक महीना है हज का महीना। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला की पैदाइश जो है वो शव्वाल में हुई थी, शव्वाल में हुई थी। तो उनके सवानह निगारों में से बाद हजरत लिखते हैं बाकायदा कि अल्लाह ताला शानहु ने उन पर फजल फरमाया कि अशखोर हज में पैदाइश हुई, हज के जमाने में पैदा हुई वो। शव्वाल, जुलकादा और जुलहिज्जा के शुरू के दिन, ये हज के दिन है, इनमें अहराम बांध करके जा सकते हैं। अब हज के लिए आप अहराम बांधना चाहे तो बांध सकते हैं और जा सकते हैं, जाकर के तवाफ कर सकते हैं। अब और फिर ये हज के महीनों में जुलहिज्जा, आज 29 जुलकादा है, 29 जुलकादा है, तो हो सकता है कि कल मगरिब से जुलहिज्जा शुरू हो जाए। ये जुलहिज्जा के जो शुरू के 10 दिन है ईद समेत, ईद के साथ, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुलहिज्जा के 10 दिन ऐसे हैं कि जिनमें अल्लाह को इबादत जितनी महबूब है इतनी और दिनों में नहीं। इन 10 दिनों में अल्लाह ताला शानहु को इबादत जितनी पसंद है उतनी और दिनों में नहीं, सबसे ज्यादा इबादत पसंद इसमें है। और सबसे ज्यादा महबूब अगर इन दिनों में इबादत है, इसका मतलब यह कि इन 10 दिनों के अलावा में किसी जगह पर कोई इबादत करेगा तो अल्लाह बहुत खुश होगा, लेकिन जितना इन दिनों में खुश होगा उतना नहीं। और इबादत कितनी खुश है, इबादत पर कितना खुश होता है अल्लाह, कितनी खुशी बढ़ जाती है इन 10 दिनों में, इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 10 दिनों में जो रोजा रखेगा, तो 10 दिनों में से दूसरी हदीस से पता चलता है कि ईद के दिन रोजा रखना तो जायज नहीं, तो इन 9 दिनों में जो रोजा रखेगा उसे एक एक दिन के बदले में पूरे पूरे साल के रोजों का सवाब मिलेगा। इतने अल्लाह खुश होते हैं, इतनी पसंदीदा है ये इबादत। तो आज अगर ये 29th है और 29th पर जुलकादा खत्म हो जाता है तो फिर संडे को पहला दिन होगा जुलहिज्जा का। और अगर 30 दिन है जुलकादा के तो मंडे को पहला दिन होगा जुलहिज्जा का। इन दिनों में रोजा रखने की कोशिश करो मेरे भाई, अगर पूरे 9 दिन नहीं, इसलिए कि लंबे दिन है, 9 दिन रोजे रखे तो 9 सालों के रोजों का सवाब मिलेगा। मैं तो ये समझता हूं कि ये हमारी सुस्ती और गफलत है कि हम ये कहें कि बहुत लंबे रोजे हैं, बहुत लंबे रोजे हैं। अगर कोई इतना कह देना कि जो एक दिन रोजा रखेगा, एक दिन, एक दिन, उसे पूरे महीने की तनख्वाह के साथ डबल तनख्वाह मिलेगी, तो कहेगा कि मैं 10 रोजे रखता हूं, 10 महीने की दे दो ना तनख्वाह। यकीन नहीं है हमारा आखिरत के अजर व सवाब पर। ये फिजा मेरे भाइयों पैदा करो, है जिन लोगों को अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, जिनके मशागिल और जिनकी एक्टिविटीज और जिनके ऑक्यूपेशन और एंगेजमेंट्स ऐसे हैं कि आसानी के साथ वो ये काम कर सके, करो। और दूसरों को भी तरगीब दो, कंपेल मत करो, कंपेल तरगीब दो। तो इन 10 दिनों में जितनी अल्लाह को खुशी होती है और जितनी महबूब है इबादत, इतनी और किसी दिन में नहीं। और कितनी कितनी महबूब है इबादत कि जब कोई एक रोजा रखता है तो उसे एक साल के रोजों का सवाब देते हैं। और जो रातों को इबादत करता है इन 10 रातों में, ईद की रात समेत, इससे कि ईद के दिन रोजा रखना मना है, ईद की रात में इबादत करना मना नहीं है। इसलिए दूसरी सारी इबादतें दसवें दिन भी करो, और ऐसा समझो कि वो दस दिन जिनमें अल्लाह को इबादत बहुत ज्यादा पसंदीदा है वो दसवां दिन आज खत्म हो रहा है, हो सकता है कि आइंदा साल में जिंदा न रहूं। तो जैसे रमजान मुबारक के आखिरी दिन में असर और मगरिब के दरमियान मस्जिद भर जाती है, तो ये दसवीं जुलहिज्जा को ईद के दिन तो असर और मगरिब के दरमियान मस्जिद भर जानी चाहिए कि वो दस दिन जिनमें बहुत ज्यादा अल्लाह को इबादत पसंद है वो दस दिन अब खत्म हो रहे हैं, और गफलत में नौ दिन गुजर गए, चलो कुछ कर लेता हूं, या ये कि नहीं गफलत में नहीं गुजरे तो कोई बात नहीं, जितना ज्यादा और कर लूं। लेकिन ऐसा हम और आप करते क्यों नहीं? इसलिए नहीं करते कि रमजान और मुबारक का बार बार मुजाकरा होता है, इन दस दिनों का मुजाकरा नहीं होता। तो लोगों के दिलों में ये बात बैठी हुई है कि ये रमजान बहुत बरकत वाला, और इन दस दिनों के बारे में ये जहन नहीं बना हुआ है हमारा, इसलिए बार बार इसके मुजाकरे की जरूरत है। आम करो खूब। हमारी इस्लामिक दवा एकेडमी की तरफ से 10 डेज ऑफ जुलहिज्जा के नाम से एक बहुत सिंपल लीफलेट भी छप गया है, वहां आपको मिलेगा। खुद भी ले जाओ अपने घर के लिए और दूसरों को भी पहुंचाओ, और हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड करके सोशल मीडिया के जरिए इसे आम करो। मैं तो लोगों को यही मशवरा देता हूं कि सोशल मीडिया में अपना वक्त जाया मत करो, लेकिन ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बात पे अमल कौन कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास सोशल मीडिया नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि दूसरी चीजें पढ़े, इससे अच्छा है कि लीफलेट पढ़े। जो सोशल मीडिया से बच सकता है ये तो नूर नला नूर है, बहुत अच्छा उसके लिए, उसका वक्त बचेगा, उसका वक्त महफूज रहेगा, गुनाहों से बचेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, लायानी से बचेगा। तो भाई इन दस दिनों में इबादत करनी है खूब, इन दस दिनों में रातों को इबादत करो, रातों को इबादत करो, मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ो, तो शबे कदर में मगरिब पढ़ने के बराबर होगा, शबे कदर का सवाब देते हैं अल्लाह ताला। ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ो, मगरिब और ईशा के दरमियान अभी रात छोटी है, तो इसी नीयत से आ जाओ कि आ गए ये अल्लाह जब तक मैं मस्जिद में हूं मेरी एहतिकाफ की नीयत है। फिर घर जाकर के सो जाओ, तहज्जुद के लिए उठो, चलते फिरते जिक्र अजगार करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में ये इरशाद फरमाया कि इन दिनों में इबादत जितनी महबूब है अल्लाह को इन दस दिनों में, और जितनी वजनी हो जाती है अल्लाह की नजर में, जितनी कदर वाली हो जाती है, इतनी और दिनों में नहीं होती। इसलिए तुम बहुत ज्यादा मकामात उलूहियत वाले चार कलिमात को पढ़ो। इस हदीस में तरतीब जरा बदल गई है, लेकिन आप उसी तरह पढ़ते रहो, अगर याद न रहे हदीस की इत्तिबा में अगर कोई कलिमात पढ़ना चाहे तो सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और अगर किसी को यह तरतीब याद न रहे तो वो तरतीब अगर कोई करेगा तो भी इस हुक्म को पूरा कर लेगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसलिए कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की फजीलत में जो हदीसें आई हैं उनमें से एक हदीस में यह है कि इनमें से जिससे तू चाहे शुरू कर सकता है। इसका मतलब है कि तरतीब आगे पीछे हो जाए तो कोई हरज नहीं। और हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वस्सलाम, उनसे मुलाकात हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लाए वापस हुए तो सहाबा से कहा कि मेरी हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वस्सलाम से मुलाकात हुई थी और हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वस्सलाम ने यह कहा है कि तुम अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कह देना। अलैहि है बोलो भाई, वाला नबी ये ना अस्सलातो वस्सलाम। क्या मकाम है इस उम्मत का कि इब्राहिम खलीलुल्लाह सलाम भेज रहे हैं, और वो सलाम भी आ रहा है किसकी विसातत से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से। और फिर अल्लाह ताला शानहू ने इस सलाम से कियामत तक आने वाली उम्मत के हर फर्द को बेहरावर करना था, तो सनद मुत्तसिल के साथ आज तक ये हदीस चल रही है, इधर उधर जाया नहीं होने दी, ताकि हर उम्मती के कान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सलाम जावे और उसे खुशी महसूस हो कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मुझे सलाम भेजा है। अलैहि वाला नबीयना सल्लतु वस्सलाम। और फिर कहा कि मेरा सलाम कहने के बाद ये पैगाम दे देना कि जन्नत चटियल मैदान है, जन्नत चटियल मैदान है। एक प्लॉट आप खरीदे तो फिर इमारत आपको बनानी पड़ती है, तो क्या जन्नत चटियल मैदान है तो बाग बनाओ, खुद खुद बाग बनाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे और आप पर यह पैगाम भेजा है। और बाग बनाने का तरीका क्या है, कहकर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जो एक मरतबा पढ़ता है जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम एक मरतबा कहीं तशरीफ ले जा रहे थी तो देखा कि एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु बाग में दरख्त लगा रहे हैं, बाग में दरख्त लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो, तो कहा कि बाग में दरख्त लगा रहा हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा जन्नत में दरख्त लगाओ, जन्नत में दरख्त लगाओ। कहा कि जन्नत में कैसे दरख्त लगाएं, तो कहा पढ़ो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो कितने अमल हमारे सामने आए, कितने अमल हमारे सामने, एक तो रोजा रखो, एक साल के रोजों के बराबर सवाब है, नौ दिन में से जितने दिन रोजे रखेंगे। रातों को इबादत करो, इसलिए कि शबे कदर में इबादत करने के बराबर सवाब मिलेगा। तीसरी चीज, इन दिनों में, इन दस दिनों में, ईद दिन, ईद के दिन समेत, एक कल मगरिब से शुरू हो जाना चाहिए, तीसरा कलिमा खूब पढ़ो, तीसरा कलिमा खूब पढ़ो। और ये दस दिन जो है इनमें भी क्रीम जो है वो अरफा का दिन है। अरफा के दिन जो रोजा रखेगा उसे एक साल के रोजों का सवाब भी मिलेगा और उसके अगले एक साल और पिछले एक साल के सगीरा गुना भी माफ हो जाएंगे। अगले पिछले एक एक साल के गुना भी माफ हो जाएंगे। हजरत शेख हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह और बाज दूसरे हजरात उलमा ने भी ये लिखा है कि अगर किसी को अरफा के दिन रोजा रखने की तौफीक मिल जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि इंशाल्लाह एक साल तक तो जिंदा रहूंगा, इसलिए कि हदीस में यह है कि आने वाले एक साल के भी सगीरा गुना माफ हो जाते हैं। शायद दूसरी फजीलतें तो किसी को रोजी पर ना लाए, लेकिन ये ले आएगी, ये ले आएगी कि भाई हम कियामत तक हम हर अरफा का रोजा रखेंगे, कियामत तक अरफा का रोजा रखेंगे। तो ये तो एक करीना है, ऐसी उम्मीद है कि इंशाल्लाह है, वरना जब मौत आएगी तो उस साल रोजा नहीं रख सकोगे, जितना चाहोगे फिर भी रोजा नहीं रख सकोगे, बीमार हो जाओगे और डॉक्टर ये कहेगा कि ये दवा तो आपको पिलानी ही पड़ेगी हमें। अल्लाह अकबर कबीरा। अरफा के दिन का रोजा तो किसी का नहीं छूटना चाहिए, वही सब नियत करते हैं तो एक साल के रोजे का सवाब मिलेगा और साथ में अगले पिछले गुनाही सगीरा माफ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। और फिर ईद, ईद का दिन भी इबादत में गुजारो, ईद की रात बड़ी फजीलत वाली, ईद की रात बड़ी फजीलत वाली, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाते हैं, मगफिरत फरमाते हैं। तो ईद की रात जो है इधर उधर लहु लहब में मत गुजारो, ईद की रातें, ईद का दिन लहु लहब में गुजर जाता है। 24 आवर्स अगर ईद के आप देखें, ईद उल फितर के भी और ईद उल अजहा के भी, तो दीनी चीज तो आपको एक ही नजर आएगी, वो ईद की नमाज। ईद की नमाज के अलावा बस सब मजे में पड़े, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे खाने खाओ, हदीये तहाइफ दो, एक दूसरे से मिलो, खुशियां मनाओ। लेकिन इन सब कामों को करते हुए खुशियां देने वाले को तो मत भूलो, ये तो सोचा करो कि किसकी वजह से ये खुशियां मिली है। ईद के दिन भी, और एक बहुत अहम चीज, एक बहुत अहम चीज, एक बहुत
अहम काम दसवीं जुलहिज्जा को यानी ईद के दिन, और वो चलती रहती है ईद के दो दिन बाद तक, उसे कुर्बानी उदहिया सैक्रिफाइस कुर्बानी, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन तीन दिनों में यानी 10th ऑफ जुलहिज्जा, 11th ऑफ जुलहिज्जा, 12th ऑफ जुलहिज्जा जितनी इबादतें हैं उन इबादतों में सबसे ज्यादा महबूब इबादत अल्लाह ताला शानहु को कुर्बानी है। तो अगर कोई 10th ऑफ जुलहिज्जा को कुर्बानी करता है तो उसे डबल फायदा। क्या डबल फायदा? एक तो सबसे महबूब इबादत है कुर्बानी, इन तीन दिनों की सबसे महबूब इबादत कुर्बानी, और फिर वो ऐसे दिन में कर रहा है कि जिन दिनों की इबादत अल्लाह को बहुत महबूब। भाई कुरान और हदीस तो इन नियतों से भी तो पढ़ो है तलबा, इन नियतों से भी तो पढ़ो, जैसे एक ताजिर पढ़ता है ताजिर, और फिर बतलाओ लोगों को कि ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है कुर्बानी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर कुर्बानी के जानवर को जबह किया जाता है तो उसके कतरे के जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की अल्लाह मगफिरत फरमा देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जानवर जिसे जबह किया गया है वो जानवर बालों के साथ, खालों के साथ, खुरों के साथ, सीनों के साथ कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आएगा। इसका मतलब यह है कि उसे मीजान में रख करके तोला जाएगा, उसका खास एक वजन होगा। और अगर हिस्सी तौर पर न तोला जाए तो इस कुर्बानी का गोया बहुत बड़ा वजन होगा अंदर, यानी एक एक चीज पर अजर सवाब मिलेगा। तो जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? जो बालिग आकिल हो और साहिब निसाब हो। और साहिब निसाब का क्या माना? जकात की तरह कि पूरा साल गुजरे? नहीं, साहिब निसाब यानी जितनी रकम पर जकात वाजिब हो जाता है 52.5 तोला चांदी या उसकी इक्विवेलेंट कीमत, वो इन तीन दिनों में अगर किसी के पास आ जाए, उसकी मिल्क में आ जाए या वो उसको पोजेस करता है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जीरो है, ईद की नमाज पढ़ने के लिए आए तब भी जीरो था, सुबह भी जीरो था, और 10th ऑफ जुलहिज्जा को जीरो रहा, 11th ऑफ जुलहिज्जा को भी जीरो रहा, और 12th ऑफ जुलहिज्जा को असर तक जीरो रहा, और असर के बाद किसी ने उसे 1,000 पाउंड हदीये में दे दिए। अब ये साहिब निसाब हो गया, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई। गुरूब से पहले पहले अगर किसी के हाथ में निसाब जितनी रकम आ जाए तो वो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और कुर्बानी वाजिब होती है पर होल्ड नहीं, पर पर्सन, यानी जो भी साहिब निसाब है, बीवी साहिब निसाब है तो उन पर वाजिब, मर्द साहिब निसाब है उस पर वाजिब। हमारे यहां से कुर्बानी का लीफलेट छपा हुआ है, वो लीजिए, मुफ्तियों से, उलमा से पूछिए कुर्बानी। एक वाजिब कुर्बानी, एक बड़ा जानवर है तो एक हिस्सा वाजिब, और बकरी है तो एक, बकरी है, दुम्बा है, एक 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 जानवर वाजिब। और वाजिब के अलावा अगर अल्लाह ताला शानहु ने किसी को खुलूस दिया हो और वो खुलूस के साथ करेगा तो जितनी ज्यादा कुर्बानी करेगा इतनी ज्यादा मिजान में आएगा, जितने ज्यादा खून बहेगा उतनी ज्यादा मगफिरत होगी। अब आप कहेंगे कि मगफिरत तो हमारी हो चुकी है पहले जानवर ही से, तो दूसरे जानवर से कौन सी मगफिरत, कौन सी मगफिरत? तो जितने गुनाहों की मगफिरत हो गई है, अब चूंकि गुनाह रहे नहीं तो आगे जो है, आगे जितने जबा होगी उतना सवाब मिलता रहेगा, सवाब मिलेगा उसका। जैसे एक शख्स इस्तिगफार करता है, इस्तिगफार तो अगर गुनाह है तो माफी होगी, और गुनाह नहीं है तो अजर सवाब मिलता है। एक शख्स ने एक गुनाह किया, जिस गुनाह की वजह से वो जहन्नम में नीचे उतर गया, जहन्नम में। अब उसने तौबा कर ली तो जहन्नम से निकल गया, मगर एक शख्स पहले ही से जहन्नम से बाहर है, अब वो इस्तिगफार करेगा तो वो और ऊपर जाएगा, फिर इस्तिगफार करेगा तो और ऊपर जाएगा। اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے رفع درجات کے لیے. استغفار کے دو فائدے ہیں, ایک گناہوں کا معاف ہونا اور دوسرا رفع درجات. بیماری کیا کرتی ہے؟ بیماری اگر گنہگار ہے تو کفارہ سیئات, اور اگر گناہ نہیں ہے تو رفع درجات. تو استغفار بھی اسی طرح ہے, اگر گنہگار ہے تو کفارہ سیئات, اور گنہگار نہیں تو رفع درجات. تو جن جن جگہوں پر ایسی بات آتی ہے کہ اگر یہ عمل کرتا ہے تو مغفرت ہو جاتی ہے, سوال یہ کہ جب مغفرت ہو گئی تو اب اس کو ڈبل کریں گے تو ڈبل کریں گے تو رفع درجات. تو قربانی کرنی ہے, اور جتنی زیادہ کر سکو اچھا ہے. اور اس سلسلے میں میں آپ حضرات سے گزارش یہ کروں گا کہ غریب ملکوں میں بھی کراؤ. بہت سے ملک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو پورے سال میں قربانی کے موقع پر ہی گوشت کھانے کو ملتا ہے, لیکن معتبر جگہوں سے کراؤ, معتبر لوگوں سے کراؤ. ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی نہیں ہو رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگوں کو آپ پیسے دے دیں جو ایسے لوگوں کو آگے پہنچائے جو خیال نہیں کرتے کہ جانور, اس لیے کہ قربانی کے لیے بھی جانور متعین کیا ہے شریعت نے کہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, فولٹی نہیں ہونا چاہیے, عمر اس کی اتنی ہونی چاہیے. تو معتبر لوگوں کو, اچھے خدا ترس لوگوں کو دو, اور قربانی کراؤ غریب ملکوں میں بھی, غریب ملکوں میں کراؤ. اور ہر اچھی چیز میں برائی بھی ہوتی ہے, ہر اچھی جماعت میں بری جماعت بھی, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر اچھی جگہوں پر برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ آج کل جو ہیں یہ ریلیف والے بھی جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں آج کام کر رہے ہیں, بہت ساری ریلیف ہیں. تو ذرا دیکھو کہ کون ہے, اچھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. ایسا نہیں کہ جہاں آنکھ بند کر کے دے دیا, نہیں, پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ کرو. پیسہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ دس غریبوں کا پیٹ بھرنے والا تھا آپ نے ایسے شخص کو دے دیا جس کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے اور وہ ڈکار لینے کے لیے کھا رہا ہے, پیسے کا ڈکار, جیب بھر رہا ہے پیٹ بھرنے کے بجائے, کسی کا پیٹ بھرنے کے بجائے اپنی جیب. اس لیے معتبر لوگوں کو دو, جن کو آپ پہچانتے ہیں, جن کو آپ جانتے ہیں. تو غریب ملکوں میں بھی کراؤ, لیکن غریب ملکوں میں کرانے سے فارغ مت ہو جاؤ, اور ایسا مت سمجھو کہ بھئی ہم نے تو وہاں کرا لیا, یہاں کراتے ہیں تو 100 پاؤنڈ میں بھی ایک نہیں ہوتی, اور وہاں کراتے ہیں تو 100 پاؤنڈ میں 7 ہو جاتی ہے, 100 پاؤنڈ میں 7 باہر, اور یہاں نہیں, یہاں ایک کم سے کم کرانی چاہیے, کم سے کم کراؤ تاکہ آپ کی خود کی قربانی کا گوشت آدمی تو کھائیں. نمبر ایک, آپ کے تعلقات نہیں ہوں گے تو قربانی کا گوشت ملے گا ہی نہیں, اس لیے کہ کوئی بھیجے گا تو ملے گا, تو خود کی قربانی ہو. تیسری بات یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب دیکھتے ہیں نا, جب ان کو پتا چلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کہتے ہیں کہ قربانی ہونے والی ہے, قربانی ہونے والی ہے, بچے بھی بات کرتے ہیں گھر میں, پھر وہ دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر بھی اسلامی شاعر اور اسلامی اعمال کی عظمت بڑھتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. اس لیے قربانی ادھر بھی کراؤ اور یہاں بھی کراؤ, قربانی کا اہتمام کرو. اور ایک اور آخری چیز رہ گئی کہ 9ویں ذوالحجہ سے لے کر 9ویں ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی اثر تک مرد عورت دونوں کے لیے فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق واجب ہے. مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں, عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سارے کام کرنے ہیں ہمیں, یہ جتنے کام ہمیں کرنے ہیں تو ان کی توفیق اگر مل جائے تو اللہ کا خوب شکر ادا کرو, اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالی شانوں کا بڑا احسان ہوا کہ ہمارے لیے مواقع کو مہیا بھی کیا, اور مہیا کرنے کے بعد اس سے فائدہ بھی اٹھوایا, توفیق بھی دی. اور پھر 10 دن گزر جانے کے بعد یہ سوچو کہ یہ وہ دن تھے جن میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار یاد آتی رہی کہ انہوں نے پوری زندگی فرما برداری کے ساتھ گزاری. اسلم اے ابراہیم, فرما برداری کر, اسلم تو لرب العالمین, میں فرما برداری کر لی, کس کی؟ اللہ کی نہیں, کہا کہ رب العالمین کی, اور اس میں یہ اشارہ کیا کہ آپ جب رب العالمین ہیں تمام جہانوں کے مربی اور پرورش کرنے والے تو میری بھی تو آپ ہی نے پرورش کی ہے, آپ کی اگر فرما برداری نہیں کریں گے تو کس کی؟ یہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت جس کی اتباع کا مجھے اور آپ کو بھی حکم ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا. اتبع ملت ابراہیم حنیفہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. یہ ملت ابراہیمیہ کیا ہے؟ رضا و تسلیم. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ماننے کے لیے میرا سر جھک چکا ہے, اب آپ حکم کرتے جائے. حکم کرنا آپ کا کام ہے, اس کو بجا لانا آپ کے بندے کا کام ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری پوری وطن چھوڑو چھوڑ دیا, باپ کو چھوڑو چھوڑ دیا, بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑا وہ چھوڑ دیا, بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑا وہ چھوڑ دیا, بچے کے گلے میں چھری چلا تو چھری چلا دی. یہ رضا کیوں کیا نہیں؟ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ ہوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ملت ابراہیمی کو اپنائے گا اسے وہی اجر ملے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا, اسے وہی تمغہ ملے گا, تمغہ وہی میڈل ملے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا. وہ تمغہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ اصطفیناہُ فِي الدُّنْيَا. والآخرہ, دونوں میں, دنیا اور آخرت میں ہم نے ان کو منتخب کر دیا. انی جاعلک للناس اماما. بعد امتحانات لیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ شانہ ہوئی ارشاد فرماتے کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیا کچھ باتوں سے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور رزلٹ کیا ہے؟ فَأَتَمَّهُنَّ, پاس ہو گئے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, یہ پاس. امتحان ہوا, رزلٹ کیا نکلا؟ پاس. اور جب رزلٹ میں کوئی پاس ہوتا ہے تو اسے انعام دیا جاتا ہے. ڈاکٹر پاس ہوتا ہے تو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ اب آپ ڈاکٹر ہو گئے. اب آپ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا تحفے میں؟ کیا سرٹیفکیٹ ملا؟ انی جاعلک للناس اماما. جا ابراہیم, میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. تو میرے بھائیو, یہ دس دن جو ہے اسی ملت ابراہیمی کا جو اصول ہے, اسلم تسلم اسلم تسلم, فرما بردار ہو جا سلامتی پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہرپ لگو کہ اسلم, اس ملت ابراہیمی پر آ جا, تسلم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات پا جائے گا. بس یہ دس دن محنت کرنے کے بعد پھر جب عید الاضحیٰ ختم ہو جائے تو ایسا سوچنے کا کہ یار ان دس دنوں میں اگر میں کر سکتا ہوں تو آگے کیوں نہیں کر سکتا, اور پھر چلتا رہے موت تک. اللہ جل جلالہ عام من والوں ہمیں عمل کی توفیق دے. پھر میں وہ شعر جو ہے وہ دہراؤں گا, ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. یعنی ہر وقت زبان سے بھی اللہ اللہ کہے, دل دماغ میں بھی اللہ کی یاد رکھ, اور اللہ کی یاد رکھ کر قدم اسی سمت میں اٹھا جس سمت میں اللہ تیرے قدم کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, اس کا ہو کر کے جی. اگر تو اس کا ہو کر جیے گا تو جیسی زندگی ویسی موت. جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بابا بابا سب سے رشتہ توڑ, یہ ہے یہ ملت ابراہیمی. بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا رب سے رشتہ جوڑ. میرے حضرت دودھیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا سب سے رشتہ جوڑ. اللہ تعالی شانہ ہمیں اسی وقت اپنے خالق اور اپنے معبود حقیقی اور اپنے منعم حقیقی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہی ہم بیٹھ کر کے توبہ کرنے اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ ہم آپ کے ہو گئے ہیں, توبہ کر چکے ہیں, اور ابھی سے ہم اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں. اور کل مغرب سے تو خاص طور پہ, اور پرسوں سے تو بالکل طے ہی ہے کہ ذوالحجہ اب شروع ہو گئی ہے, ان دس دنوں میں ہم اللہ تعالی شانہ سے اپنا رشتہ جوڑیں, اور پھر موت تک ہر دم اللہ اللہ ہو, ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی,
मरे तो उसका होकर मर। ये जो कलिमात आज मैंने अर्ज किए हैं बिलखसूस आखिरी कलिमात, ये वसीयत और नसीहत बनने के काबिल है। मेरा कल दो हफ्ते के लिए सफर हो रहा है अफ्रीका का, तो आप हजरत दुआ भी फरमाए कि अल्लाह ताला शानहु सऊबतों से हिफाजत फरमाए, परेशानियों से हिफाजत फरमाए, आफियत वाला सफर नसीब फरमाए और अल्लाह ताला शानहु अपनी रिजा वाले काम करवाएं और हिदायत के आम होने का जरिया बनाए और अल्लाह ताला शानहु मेरी आपकी सबकी उम्रों में बरकत दे, मुझी अमराज से हमारी हिफाजत फरमावे और अल्लाह ताला शानहु हमें अपनी रिजा वाली जिंदगी नसीब करे, दीन की खिदमत अल्लाह खूब कराए हम लोगों से और अल्लाह ताला शानहु मौत भी अपनी मर्जी के मुताबिक नसीब करे और अल्लाह ताला शानहु जन्नत में भी हम सबको अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन के साथ हमें जोड़ के रखे। ये आखिरी वक्त में बुजुर्गों के यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलग होने के वक्त नसीहत किया करते थे, तो ये जो बातें हैं ये नसीहत ही है, ये नबवी नसीहतें और कुरानी नसीहतों ही का खुलासा है, बुजुर्गों की नसीहतों का खुलासा है। अल्लाह ताला शानहु हम सबको कबूल फरमाए। वआखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबीयना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم اذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اجعلنا ممن طال عمرهم وحسن عملهم اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضه توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هم سبكو قبول فرما هم سبكو قبول فرما هم سبكو قبول فرما إله العالمين إله العالمين همیں سعداء میں شامل فرما نجبا میں شامل فرما صلحاء میں شامل فرما إله العالمين مرضیات پر چلنے والا بنا دے نا مرضیات سے ہماری حفاظت فرما ان ایام کی الہ العالمین خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما زندگی کے ایک ایک لمحے کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین
ہم سب کو علم صحیح میں برکت عطا فرما. الہ العالمین اس پر اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین اس کو پورے عالم میں عام کرنے کا جذبہ نصیب فرما, اس کے لیے وسائل نصیب فرما, ہمت نصیب فرما. الہ العالمین آج جتنی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے ہر ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے, ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے, اپنا قرب خاص نصیب فرما دے. الہ العالمین پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما, علم صحیح کو عام فرما, علم نبوت کو عام فرما. الہ العالمین الہ العالمین حق اور باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت عطا فرما, حق قبول کرنے کی باطل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین بڑے پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں, الہ العالمین صحیح کیا ہے غلط کیا ہے الہ العالمین سمجھنا بہت مشکل ہے. الہ العالمین علماء حق کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین علماء حق کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے لیے علماء حق کا تعلق مہیا فرما, ہمیں علماء حق کی وابستگی نصیب فرما, علماء حق کی وابستگی نصیب فرما, علماء حق کی وابستگی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین بری چیزوں سے برائیوں سے بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین تیری رضا کے جو اسباب ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں موفقین میں شامل فرما, موفقین میں شامل فرما, موفقین میں شامل فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین حق کی حفاظت فرما, اہل حق کی حفاظت فرما, اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما. ہمیں بھی اہل حق میں شامل فرما, ہمیں بھی اہل حق میں شامل فرما, ہمیں بھی موت تک اہل حق میں شامل فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما. الہ العالمین حجاج کے حج کو قبول فرما, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. الہ العالمین الہ العالمین ان کے قیام کو برکت والا بنا دے, ان کے قیام کو آداب والا بنا دے. الہ العالمین الہ العالمین انہیں تمام ارکان کو تیری رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان کی عمروں کو قبول فرما, ان کے طوافوں کو قبول فرما, ان کی عبادتوں کو قبول فرما, مدینہ منورہ کی زیارت کو قبول فرما. اے ارحم الراحمین ان پر فیضان فرما, حرمین شریفین کے انوارات انہیں نصیب فرما, ہمیں بھی حرمین شریفین کے انوارات نصیب فرما. الہ العالمین ان کی دعاؤں میں ہمیں شریک فرما. الہ العالمین بار بار وہاں کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما, بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما, وہاں کی محبت و عظمت نصیب فرما. الہ العالمین الہ العالمین وقت آخر بھی ہمیں وہاں پہنچا دے, اور ہمیں حرمین شریفین کی شہادت والی تیری رضا والی عبادت والی الہ العالمین تیرے راستے والی موت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کا سوال کیا ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.